हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज की गीतामृत कार्यक्रम में। संख्या थोड़ी कम लग रही है आज, कई लोग मुझे कह रहे थे आज लोग बिजी रहेंगे थोड़ा, कुछ नोट गिनने में। मेरे ख्याल से दिवाली के पश्चात सबसे बड़ा पटाखा हमारे प्रधानमंत्री ने फोड़ा है और दिवाली की पूरे देश की सफाई शुरू करी है उन्होंने। कई कह रहे हैं दिवाली के बाद दिवाला। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के गोविंद प्रभु, उन्होंने बहुत सुंदर एक वीडियो बनाया है जो भी ये 24 घंटे में हुआ है उसके संदर्भ में। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम हमारे गोविंद प्रभु से बनाया हुआ ये वीडियो देख लें। एक मैसेज ऐसा आया था, मान लो कि राम युग जैसी या राम राज्य जैसी फीलिंग आ रही है कि जेल से तोड़कर कोई भागने का इच्छा नहीं कर रहा और तिजोरी से कोई माल लूटने की इच्छा नहीं कर रहा तो ऐसा लग रहा है कि राम राज्य आ गया है। और हमारा श्लोक भी उसी के संदर्भ में चल रहा है पिछले 3 हफ्तों से। तो ये है भगवद गीता 4वां अध्याय 12वां श्लोक, आज भाग क्रमांक 4 है। कांक्षंत कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षंत कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षंत कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो पिछले श्लोक से संदर्भ, भगवान के भाव को भी जो नहीं प्राप्त करना चाहता उसके भी इच्छुक नहीं है, अथवा जो भगवान के मार्ग का भी पालन नहीं करना चाहते तो उनका क्या, और इस सवाल का जवाब हमारे आज के श्लोक में भगवान दे रहे हैं। तो हम हमारे पिछले 3 सेटिंग्स में ये जो पहली पंक्ति है, विशेष रूप से कर्मों की सिद्धि जो चाहते हैं और जो सकाम कर्मी हैं, अर्थात कामनाओं से युक्त अपने कर्मों की सिद्धि चाहते हैं, वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। लिविंग इन फुल एंजॉयमेंट एज अगेंस्ट लिविंग इन फुल एनलाइटनमेंट। तो भगवद गीता में ये 2 लाइन समान रूप से समझ में आती है, हालांकि अर्थ उसका बहुत अलग है। आज के श्लोक में भगवान कहते हैं क्षिप्रम ही मानुषे लोके, और 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कॉन्स्टेंट प्यूरिफिकेशन वर्सेस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो पिछले बार हमने ये मुद्दा लिया था कि जो सकाम कर्मी हैं और कर्मों की सिद्धि चाहते हैं तो उनकी श्रृंखला इस प्रकार से होती है, गेट बिगेट फॉरगेट एंड देन रिग्रेट। तो हमने उदाहरण लिया था कि जैसे कोई जब इलाज कराता है अपना, किसी डॉक्टर के पास जाता है, उसे दर्द है, पीड़ा है, कोई बीमारी है, तो डॉक्टर उसे औषधि देता है और उसके साथ पेन किलर देता है। अब पेन किलर वो औषधि नहीं है, वो उसकी बीमारी को दूर नहीं करेगा, केवल उसका दर्द कम करेगा। पेन किलर उसकी बीमारी को दूर करने के लिए औषधि डॉक्टर उसके साथ साथ देता है। तो उसी प्रकार से यहां पर यदि ये दो उदाहरण से हम समझने की कोशिश करें, एक है भौतिक सफलता और एक है आध्यात्मिक सफलता, तो आध्यात्मिक सफलता वो औषधि है और भौतिक सफलता वो पेन किलर है। हां, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है, परंतु बिना पेन किलर के भी कोई ठीक हो सकता है, परंतु बिना औषधि के केवल पेन किलर लेता रहे तो उसकी बीमारी दूर नहीं होगी। मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, ये बहुत प्रसिद्ध एक मुहावरा प्रवर्ब है अंग्रेजी भाषा में, तो हमने इसको एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया महाभारत का जो प्रसंग है शांति दूत का, जिसमें भगवान ने एक प्रस्ताव रखा दुर्योधन के समक्ष, कुरुवंश के समक्ष, गॉड प्रपोज्ड, दुर्योधन डिस्पोज्ड। अब हमें लग रहा होगा कि दुर्योधन, हाँ वो अपने जमाने का बहुत खूंखार एक राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, परंतु जब भी हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में कम ज्यादा मात्रा में भगवान के प्रस्तावों को ठुकराते रहते हैं तो हम भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। When God is proposing something for us to do and we keep on disposing, किस लिए? सकाम कर्मों के वजह से। तो हमने अंत में उदाहरण लिया था कि एक क्लब है आइसक्रीम क्लब वालों वो मेंबर्स, और एक है द कैंडल क्लब मेंबर्स, बोथ मेल्ट। द आइसक्रीम क्लब मेंबर्स, देयर फिलॉसफी इज एंजॉय बिफोर इट मेल्ट्स। कैंडल क्लब मेंबर्स, देयर फिलॉसफी इज एनलाइटन बिफोर यू मेल्ट। और हमने ये इसकी रूपरेखाएं ली थी कि आइसक्रीम वाला और जो कैंडल क्लब वाले हैं उनमें डिफरेंसेस क्या है, जो सेलियंट फीचर्स और डिफरेंसेस क्या है। ओनली द ईटर एंजॉयज, कैंडल बेनिफिट्स मेनी, फील गुड फैक्टर वर्सेस डू गुड फैक्टर, वन आइसक्रीम के नॉट फ्रीज अनदर, वन कैंडल कैन लाइट मिलियंस ऑफ अदर कैंडल्स। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ये जो प्रवृत्ति है आज के श्लोक की, हमारे आचार्य भी आज के श्लोक पर जो टीका किए हैं, मुख्य कारण है एक भौतिकतावादी मनुष्य का अहंकार, उसका अभिमान। उस अभिमान के वजह से उसका जो आत्मा है उसके सूक्ष्म और स्थूल शरीर से जुड़ा हुआ है, तो वो जो कड़ी है जो कि हमारे भौतिक शरीर को हमारे आत्मा से जोड़े रखी है, वो कड़ी किसकी है? अहंकार, अभिमान की कड़ी है। और जिसके वजह से ये जो कर्मों की सिद्धि या भौतिक सफलता जिसके पीछे ये मनुष्य लगा हुआ रहता है, जन्म जन्मांतर यह अहंकार केवल मनुष्य जीवन में नहीं है, यह अहंकार है देहात्म बुद्धि, इसमें परिणित होती है, ये हरेक योनि में आत्मा को बांधे हुए है उस शरीर में, उस पर्टिकुलर शरीर में। इसलिए आपने ये बहुत इंटरेस्टिंग एक इमेज देखा होगा ईगो के संदर्भ में, काम बिगाड़े सिर्फ 6 सेकंड में। यदि इनो काम ठीक करे 6 सेकंड में, ईगो जो है काम बिगाड़ देता है 6 सेकंड। तो अभी हम हमारे आज के सत्र में शुरुआत करेंगे इस मुद्दे को लेकर, डिफ्लेटिंग द ईगो बलून। ये जो गुब्बारा है हमारे अहंकार का, हां कईयों का गुब्बारा कम उस अहंकार से भरा हुआ है, कईयों का गुब्बारा बहुत अहंकार से भरा हुआ है, जैसे होते हैं गुब्बारों के साइजेस होते हैं, तो वैसे हम देखते हैं इस भौतिक संसार में अहंकार के भी अलग अलग साइजेस होते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जिनके पास कुछ ज्यादा अधिक नहीं है तो उनके पास अभिमान करने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए दामोदर लीला में नलकुवर और मणिग्रीव उनको जब श्राप मिला नारद मुनि के द्वारा, तो नारद मुनि उनको कहते हैं क्योंकि तुम कुबेर के पुत्र हो। ये दोनों किसके पुत्र थे? कुबेर के पुत्र। कुबेर हम सब जानते हैं कौन है। तो कुबेर के पुत्र हो सकता है, बहुत सा काला धन भी होगा इनके पास, और इसलिए इतना अभिमान। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारे अंदर ये जो मद है, कौन सा? ये धननात्मज, कि इतने बड़े धनद के आत्मज होने का जो मद है तुम्हारे अंदर, जो अहंकार है तुम्हारे अंदर, इस बीमारी को दूर करने के लिए एक ही अंजन है, और वो है दारिद्र। दरिद्रता का अंजन, जब तक तुम दरिद्रता का अंजन नहीं लगाओगे तब तक तुम्हें सच्चाई दिखाई नहीं देगी। तो आइए हम उस अंजन को लगाते हुए, इस गुब्बारे को हम डिफ्लेट करते हुए कुछ मुद्दों पर गौर करें। नो मैटर हाउ हैंडसम यू आर, नो दैट इवन मंकीज एंड गोरिल्लास अट्रैक्ट टूरिस्ट। यदि किसी को इस बात का अहंकार है कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, मुझ जैसा खूबसूरत कोई नहीं, मुझ जैसा हैंडसम कोई नहीं। और लोग क्यों खूबसूरत होना चाहते हैं, लोग क्यों इतना अच्छा दिखना चाहते हैं? ताकि कोई उनकी प्रशंसा करे, ताकि उनकी फोटोएं ज्यादा सर्कुलेट हो व्हाट्सएप पर, मैगजीन के कवर पेज पर उनकी फोटोएं हो, उनका गुणगान हो, इसलिए। लेकिन यदि अट्रैक्ट ही करना है तो यहां पर एक सच्ची बात बताई गई है, इवन मंकीज एंड गोरिल्लास। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं, चाहे कोई कितना भी खूबसूरत हो, चाहे कोई कितना भी अपने चर्म में अच्छा दिखता हो, स्किन में अच्छा दिखता हो, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो जाति गृहत्वा दंडम तदापि न मुंचति आशा पिंडम। बहुत पावरफुल श्लोक है ये शंकराचार्य, उन्होंने कह दिया है कि चाहे कोई कितना भी खूबसूरत हो, ये काल आएगा, सबके जीवन में आएगा, अंगम गलितम, ये अंग जो है ये गलना शुरू करेगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम, ये जो लहराती हुए जुल्फे हैं, वो लहराती हुए जुल्फे वो भी एक एक कर कर प्रकृति वो बाल नोच नोच कर निकाल देगी। और फिर वो कहते हैं वृद्धो जाति गृहत्वा दंडम, मुंह के दांत निकल जाएंगे और फिर वृद्ध अवस्था में एक तीसरा पैर इस्तेमाल करना पड़ेगा या दंड इस्तेमाल करना पड़ेगा चलने के लिए। परंतु जो अंतिम लाइन है श्लोक की, शंकराचार्य कहते इतना होने के बावजूद भी जो भौतिकतावादी मनुष्य होता है, कौन सा? कांक्षंत कर्मणाम सिद्धि वाला मनुष्य, उसके अंदर की जो कांक्षा है, इच्छा है, वो बुढ़ी नहीं होती। सब कुछ गल जाता है, सब पर झुरियां पड़ जाती है, लेकिन ये जो भौतिक इच्छा है इसके ऊपर बिल्कुल भी एक झुर्री, बल्कि और ज्यादा कलयुग का जो वृद्ध व्यक्ति है वो और ज्यादा जवान होता जाता है अंदर से। बाहर से सब कुछ गल रहा है परंतु अंदर से और जवान होता जाता है, और जवान होता जाता है। इसलिए यहां पर कहा गया है, No matter how handsome you are, know that even monkeys and gorillas attract tourists. No matter how strong and well built you are, know that you can't even carry yourself to your own grave. कोई यदि इस पर अभिमान कर रहा है कि मैं कितना सशक्त हूं, मैं कितना स्वस्थ हूं, मैं कितना शक्तिशाली हूं, तो समझ लो कि जब मौत आनी है, और वो तो सबको आनी है, और मौत के समय या मौत के पहले भी हम, जैसे कि वो क्या नाम उनका, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जो इतना बड़ा वो बॉक्सर था, मोहम्मद अली ने एक ऐलान कर दिया था, देयर इज ओनली वन अली एंड दैट इज मोहम्मद अली। अब अली उनके धर्म में भगवान का एक नाम है, परंतु उसने इस हद तक बोल दिया था देयर इज ओनली वन अली मोहम्मद अली। परंतु एक ओलंपिक्स में, वो इतना बूढ़ा हो गया था, एक ओलंपिक्स में उसको कहा गया था कि वो ओलंपिक्स का जो टॉर्च है वो आप जलाओ, और इतने मुश्किलों से उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे, वही हाथ जिससे वो मुक्का मारा करता था और बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीता करता था, बोला करता था देयर इज ओनली वन अली एंड दैट इज मोहम्मद अली, उसके हाथ से वो टॉर्च गिरने को था, इतना कांप रहा था उसका हाथ। सारी दुनिया देख रही है कि पता नहीं ये टॉर्च वो ओलंपिक्स का लाइट कर पाएगा कि नहीं, इनॉग्रेटिंग टॉर्च, कैसे तो उसको सहारा देते हुए उसने कर दिया। सिकंदर, हम सब सुने हैं सिकंदर के विषय में, सिकंदर जिसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया खुद के लिए, पता नहीं कितने कितने राज्य लूटे जीते सिकंदर ने, परंतु सिकंदर जब वो अपने अंतिम दिनों में था तो सिकंदर ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उसने ये आदेश दिया अपने मंत्रियों को, उस समय उसे उसकी जिंदगी का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। उसके अंतिम वृद्ध अवस्था में उसने अपने मंत्रियों को कहा कि जब मेरी मैयत निकलेगी, और वो तो निकलनी है, जब मेरी मैयत निकलेगी तो मेरी मैयत में सबसे पहले मुझे उठाने वाले चार मेरे स्वयं के वैद्य होने चाहिए, वो मुझे मेरे लाश को उठाएं। ये पहला आदेश उसने दिया अपने मंत्रियों को। दूसरा आदेश दिया कि जैसे वो मेरी लाश को उठाते ले जा रहे हैं मेरे हकीम, मेरे वैद्य, तो रास्ते में जितनी सारी अशर्फियां मैंने इकट्ठा करी है वो सब लुटाते चलो, रास्ते में वो फेंकते चलो उस मैयत। और तीसरा अंतिम आदेश उसने दिया कि जब मुझे दफनाने जाओगे तो मेरे दोनों हाथ खुले बाहर होने चाहिए, हथेली आसमान को देखते हुए खुली। तो मंत्रियों ने पूछा ये क्या माजरा है, ये सब क्यों आप आदेश दे रहे हैं, इसके पीछे का मर्म क्या है? तो उन्होंने बताया मैं ये पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि वो सिकंदर जिसने इतना बड़ा साम्राज्य अपना खड़ा किया था, जो इतना बड़ा सम्राट था अपने आप का, अपने समय का, मरते समय उसके खुद के हकीम भी उसे बचा नहीं सके, इसलिए वो मेरे लाश उठाकर ले जाएंगे। और जितनी ये अशर्फियां मैंने इकट्ठा करी वो रास्ते में बिखरते चलो, क्योंकि वो भी अभी इनवैलिड हो जाएंगी मेरे जाने के बाद, और मेरी हथेली खुली, क्योंकि ये खुली हथेली में मैं आया था और ये खुली हथेली में जाऊंगा। तू यहां मुसाफिर है, ये सराय फानी है, चार दिन की जिंदगी ये तेरी जिंदगानी है। तू यहां मुसाफिर है, ये सराय फानी है। सराय आप जानते हैं, धर्मशाला को सराय बोलते हैं, कि चाहे वो हमारा कितना भी बड़ा बंगला हो, चाहे वो हम कितने भी बड़े महान राष्ट्र में रह रहे हो, ये सब सराय है। तू यहां मुसाफिर है, ये सराय फानी है, चार दिन का मेहमा तू, ये तेरी जिंदगानी है। जन जमीर जन जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। ये सब जितना सब कुछ इकट्ठा किए हुए कुछ नहीं जाने वाला है। यहां पर तो मोदी जी अगर हैं तो वो तो जाने से पहले भी ले लेंगे सब कुछ। अगला मुद्दा, नो मैटर हाउ टॉल यू आर, नो दैट यू कांट पीप इन टू योर टुमारो। चाहे कोई कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, वो झांक कर अपने आने वाले कल को नहीं देख सकता। कौन जानता था कि कल रात क्या होगा। कोई जानता था? इसलिए कहते हैं इन 24 आवर्स टू ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड चेंज फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट इन अमेरिका द प्रेसिडेंट चेंज फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट एंड इंडिया फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट. No matter how rich and famous you are, soon there will be someone more richer and famous than you. मैंने एक दफा एक घर में देखा दो बहनें छोटी, मतलब मेरे ख्याल से उनका एक साल में उम्र का अंतर होगा, उससे भी कम होगा शायद. तो अपने डिवोटी फैमिली के दो छोटी लड़कियां, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि वो एक माला कर रही है, बड़ी वाली वो माला कर रही है, माँ ने सिखाया है तो वो माला लेकर माला कर रही थी. छोटी वाली ने देखा मुझे ये माला चाहिए, तो उसकी भी माला थी, तो माँ ने उसको उसकी माला, नहीं मुझे ये चाहिए, ये जो माला कर रही है वो चाहिए. रोने लगी, तो ठीक है ये माला उसको दे दी, इसको दूसरी माला. इसको जब दूसरी माला दी तो ये छोटी वाली कहती नहीं मुझे वो भी चाहिए. उसको कितनी, घर में जो जितने सदस्य थे सबकी एक एक माला उसको दे दी, फिर भी वो जो माला करती है वो माला चाहिए. मतलब मैं देख रहा था कि फाइनली वो क्या करना चाह रही थी कि इसके हाथ में तुम जो भी दोगे वो मुझे चाहिए. उसको माला से कोई लेना देना नहीं था. आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो माला माल हो रही है, इतना माला कर रही है. बेसिकली उसको क्या था कि उसके हाथ में जो है वो मुझे चाहिए. सुनील गावस्कर, हम सब सुनील गावस्कर को अच्छी से जानते हैं. सुनील गावस्कर ने हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में जो खिताब हासिल किया था, जो रिकॉर्ड तोड़े थे सेंचुरीज के, सेंचुरी मारने के जो रिकॉर्ड तोड़े थे, उस समय पूरे वर्ल्ड में ऐसा रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा था. और जो खिताब उनको मिला था, कई वर्षों तक वो अनब्रोकन रिकॉर्ड रहा. परंतु फिर आपको यदि याद होगा ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एलन बॉर्डर, एलन बॉर्डर ने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा. और जब एलन बॉर्डर ने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा तो सुनील गावस्कर को एक इंटरव्यू में पूछा गया, अक्सर मीडिया वाले तुरंत इंटरव्यू लेते हैं फिर, अब कैसा लग रहा है? तो मुझे अभी भी वो इंटरव्यू याद है. सुनील गावस्कर ने उस इंटरव्यू में क्या कहा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा. डायरेक्ट क्वेश्चन क्या था, एलन बॉर्डर ने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपको कैसा लग रहा है? और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और फ्रैंक रिप्लाई सुनील गावस्कर ने दिया. सुनील गावस्कर ने कहा मुझे ऐसा लग रहा है मानो एक पंछी जो ऊंची उड़ान भर रहा था और बहुत इत्मीनान से उड़ रहा था, ऊंची उड़ान भरते हुए ये पंछी इत्मीनान से उड़ रहा था, अचानक बीच उड़ान में किसी ने पंख काट दिए हों इस पंछी के, ऐसा लग रहा है. और क्या बताऊं, इफ यू थिंक यू आर अ गुड सिंगर, समवन एल्स विल कम इन फ्यू ईयर्स विल सिंग बेटर देन यू. इफ यू थिंक यू आर अ गुड स्पीकर, समबडी एल्स विल कम इन फ्यू ईयर्स विल बेटर बी स्पीकिंग देन यू. इफ यू थिंक यू आर मोर इंटेलिजेंट, यू आर मोर ब्यूटिफुल, यू आर मोर वेल्दी नॉलेजेबल, कोई ना कोई कुछ साल में आने वाला है जो आपका रिकॉर्ड तोड़ेगा. जब हम किसका रिकॉर्ड तोड़ते हैं तो हमको कैसा लगता है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यस मैं ही था वो चुना हुआ, चोजन वन, मुझे ही भेजा था भगवान ने. लेकिन जब वो हमारा रिकॉर्ड कोई तोड़ देता है तब फिर काहे को दुनिया बनाई. No matter how many servants you have, when in hospital, they won't share your bodily pain. चाहे कितने भी नौकर चाकर हों और वो सब हमारे लिए काम करते हों, सब कुछ चम्मच भी हमारे लिए उठाते हैं, यहां तक इतने सारे नौकर चाकर, लेकिन जब वो किसी अस्पताल में भर्ती होगा तो कोई भी नौकर उसका दर्द बांट नहीं सकेगा, वो उसे ही भुगतना होगा। कल हमारे देवलाली में मैं कार्यक्रम कर रहा था तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि आजकल सोने के लिए लोगों ने ऐसे ऐसे पलंग बनाए हैं। एक जर्मन में एक पलंग है 50 लाख का, केवल सोने के लिए। इस पलंग में इतने अलग अलग प्रकार के सिस्टम्स हैं, ऐसा ये एडवांस्ड बेड है सोने के लिए कि यदि किसी को रात में सोने से पहले लोरी सुननी है तो उसमें एक ऐप है, लोरी का ऐप। किसी को लोरी नहीं सुनना है, किसी को कुत्ते की भौंकने की आवाज, पहलों को उसकी भी आदत होती है, उसके बिना नींद नहीं आती भारत में, तो वो भी उसके अंदर वो ऐप होगा, कुत्ते की भौंकने की आवाज होगी, या फिर कोई वो होते ना वो कीड़े मकोड़े उनकी आवाज वो सुनने में। यदि किसी को सुबह उठते समय सूर्य उदय देखते हुए उठना है, क्योंकि एक्चुअल सूर्योदय देखने के लिए तो जल्दी उठना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई 10-11 बजे उठ रहा है, सूर्य तो ऑलरेडी कहां पहुंच गए, लेकिन वहां पर ऐसा सिस्टम है कि वो आपको ऐसा प्रतीत होगा आपके बेडरूम के अंदर कि आपके बेडरूम के अंदर सूर्य देवता आए और उदय हो रहे हैं आपके लिए, ऐसा सिस्टम उसके अंदर। फिर अलार्म के ऐसे ऐसे सिस्टम है कि आपको पहले हल्के से अलार्म बजेगा, आपको हल्के से उठाएगा, फिर भी यदि आप नहीं उठे, फिर थोड़ा जोर से वो अलार्म बजेगा, फिर भी नहीं उठे तो थोड़ा वो बेड हिलेगा, यदि आप कुंभकर्ण के क्लब के मेंबर हो फिर भी नहीं उठे तो वो उसके अंदर एक इजेक्ट बटन है, वो पूरा आपको उखाड़ के बाहर फेंकेगा बेड। लेकिन आप देखो कि कोई इतना ऐश्वर्यशाली यदि है 50 लाख का बेड लेकर, फिर भी सोने के लिए उसको नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, क्योंकि यदि 50 लाख खर्च दिए उसने बेड के ऊपर तो नींद कैसे आएगी, वो भी कैलकुलेट करने की बात है ना। और फिर मैंने देखा, मैं जपा कर रहा था हमारे इस पार्क में, तो मैंने देखा एक कुत्ता इत्मीनान से, कोई बेड नहीं कुछ नहीं, घास पे लेटा हुआ, अच्छा धूप खा रहा है सर्दियों के मौसम में फ्री में, सब पटाखे बज रहे हैं, शोरगुल हो रहा है, कोई उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है उससे, इत्मीनान से सोया है वो कुत्ता। इसलिए आप देखिए कि हम यदि कर्मणाम सिद्धि की परिभाषा यदि सकाम कर्म से जोड़ते हुए करेंगे तो हर समय हम अंततः दुख भोगेंगे, ये है इस प्रकृति का नियम। एक गरीब जिसने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, जो 3 दिन से भूखा है, वो गरीब घर में भीख मांगने जाता है और उसे 2 दिन पुरानी रोटी मिलती है, तो यदि उसे 2 दिन पुरानी रोटी मिल रही है लेकिन उसकी भूख 3 दिन पुरानी की है, भूख कितनी पुरानी है, 3 दिन पुरानी उसकी भूख है, परंतु उसको रोटी 2 दिन पुरानी मिली है, इसलिए कहा गया है कि रोटी और भूख में ताजा क्या है गरीब वो देखता है। गरीब ये देखता है, वो आराम से उस 2 दिन पुरानी रोटी को खा लेगा, क्योंकि वो ये देखता है कि उस भूख के मुकाबले ये रोटी तो ताजा है। इसलिए जब भगवान कह रहे हैं कि जो केवल अपनी कांक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, वो अग्नि में ईंधन डालकर अग्नि का शमन करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि अग्नि को आपको खत्म करना है या उसको शमन करना है तो कम से कम ईंधन डालना बंद करो। ईंधन डालने से तो विपरीत स्थिति उस अग्नि की दिखाई देगी। नो मैटर हाउ मेनी डिग्रीज यू हैव, नो दैट आफ्टर योर डेथ दे आर ऑफ नो यूज टू एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स। एक जॉइंट फैमिली में जो सबसे बूढ़े दादाजी थे, तो वो दादाजी अपने एक पुराने मित्र से मिले जो कि बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका था, होता है ना वो ईएनटी स्पेशलिस्ट, क्या कान नाक घसा, ईएनटी स्पेशलिस्ट। तो इसे जब पता चला कि मेरे दोस्त को सुनाई नहीं देता है, तो इसने बोला कि मैं तेरे कान का ऑपरेशन करूंगा। उसने ऑपरेशन किया और ठीक कर दिया, और फिर एक महीने बाद वो अपने दोस्त से मिलता है, तो फिर अब कैसा लग रहा है, पहले तुझे ऊंचा सुनाई देता था, बिल्कुल सुनाई नहीं देता था, अब तेरे को मैंने ऑपरेट कर ठीक कर दिया है, कैसा लग रहा है? तो उसने कहा, दादाजी ने कहा कि मैं पिछले एक महीने से घर में किसी को मैंने बताया नहीं कि मैं ठीक हो गया हूं। जानबूझ के मैंने घर में मेरे किसी घर वालों को बताया नहीं कि मैं ठीक हो गया हूं, और पिछले एक महीने से 5 बार मैं वसीयत बदल चुका हूं। अब आप समझ लो कि क्या चल रहा था। आगे, नो मैटर हाउ मेनी कार्स एंड बंगलोज यू हैव, नो दैट नन ऑफ देम कैन बी क्लेम्ड बाय यू इन योर नेक्स्ट लाइफ। एक बार ये शरीर खत्म हुआ, इस शरीर के नाम पर जो कागजात हैं वो भी शरीर के साथ चले जाएंगे। अगले जन्म में अगला शरीर, अगला नाम, अगला पता, अगला आइडेंटिटी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, आधार कार्ड बदल जाएगा यदि आधार कुछ रहेगा तो सब आधार कार्ड जब बदल गया तो इस जन्म का सारा जो कुछ है वो निराधार हो जाएगा, कुछ नहीं काम आने वाला, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। यदि एक और गाड़ी चाहिए, एक और बंगला चाहिए, तो फिर से क्या जद्दोजहद, फिर से वो जद्दोजहद प्रारंभ करनी पड़ेगी। नो मैटर हाउ मेनी ऑपुलेंट फूड्स यू हैव ईटन, नो दैट द टंग विल नेवर से इट्स इनफ। इसी जन्म में देख लो, बचपन से लेके अब तक ये जिह्वा ने पता नहीं कितने स्वाद चखे होंगे और कितनी बार वही स्वाद को बार बार चखा होगा, परंतु फिर भी ये जिह्वा कभी आपको कहती है अरे बस कर, कभी नहीं कहती ये जिह्वा। बेचारा पेट बोलता रहता है, फूल फूल के पेट बोल रहा है कि और कितना मुझे फुलाएगा, फट रहा हूं मैं। इसलिए ये अजीबोगरीब चीज है इस दुनिया की। आप देखते हो एक व्यक्ति है जो पेट भरने के लिए दौड़ धूप कर रहा है, एक गरीब व्यक्ति पेट भरने के लिए दौड़ धूप कर रहा है, और एक व्यक्ति उसको कम करने के लिए दौड़ रहा है कि बहुत ज्यादा भर लिया। इसलिए पहले व्यक्ति नौकरी करते थे, तो नौकरी इस शब्द का अर्थ है एक व्यक्ति जो 9 व्यक्तियों को खिला सके घर में, नौकरी। फिर वो 9 को नहीं खिला पाए, कुछ साल बीत गए कलयुग के, अब केवल 4 को खिला पाता है, तो उसको चाकरी बोलते, नौकरी से चाकरी। फिर अब स्थिति ऐसी आ गई कि बस इतना ही कमा पाता है बेचारा कि केवल अपने तन पर कुछ कपड़ा रख सके और कुछ खा सके, इसके उसको कहते तनख्वाह। तो नौकरी से चाकरी, चाकरी से तनख्वाह, अब इतना भी नहीं मिलता कि वो अपने तन को भी सुरक्षित रख सके, इसलिए उसको कहते हैं वे तन। तो ये है इस भौतिक संसार की कर्मणाम सिद्धि। नो मैटर हाउ मेनी बॉडीली कंफर्ट्स यू मे एंजॉय, नो दैट वन सिली हेडेक कैन मेक यू फॉरगेट ऑल योर पास्ट प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस। जितने भी अलग अलग आप पिकनिक में गए होंगे, पार्टी में गए होंगे, इतने सिनेमा देखा होगा, जो भी कुछ किया होगा, एक सरदर्द, वो सारे जो भी इतने घंटों दिनों हफ्तों का एंजॉयमेंट है वो सबको भुला देता है। क्या एक सरदर्द? हम तो आगे जा ही नहीं रहे, हम तो केवल, इसलिए क्या क्या सिली हेडेक लिखा है यहां। डॉक्टर ने एक मैडम से पूछा, मैडम हाउ इज योर हेडेक? मैडम ने कहा इज आउट ऑफ टाउन। कोई बात नहीं, बाद में समझ। कांक्षंत। अब हम अब तक इस शब्द को नहीं लिए थे, अब कर्मणाम सिद्धि चल रहा था, अब कांक्षंत। कांक्षंत का अर्थ है कामनाओं से युक्त। अब हम मनुष्यों को विशेष रूप से कहा गया है कि हम मनुष्य जो हैं वो विशेष योनि है, 84 लाख योनियों में हमको बहुत विशेष दर्जा दिया गया, और हां बहुत से कारणों की वजह से हमको विशेष दर्जा दिया गया। जैसे हम हमारे 6 सेशन गीता कोर्स में कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्य एतद् पशु भी नराणाम धर्मो हितेशाम अधिको विशेषो धर्मे न हीण पशु भी समान। मैं अक्सर ये प्रश्न पूछता हूं हमारे गीता कोर्स में कि क्या हम में और जानवरों में अंतर है, तो अक्सर सब लोग हाथ ऊपर कर बहुत उत्साही हो जाते हैं आंसर देने में। कई कहते हैं हाँ, एक बहुत कॉमन मैंने आजकल देखा है, पहले लोग नहीं बोलते थे लेकिन आजकल बहुत बोलते हैं, हम लोग हंस सकते हैं, जानवर हंस नहीं सकते। और काफी एक प्रकार से वैलिड पॉइंट है कि हम लोग ऐसे खिलखिलाकर हंस सकते हैं। जैसे आपने कभी गधे को हंसते हुए देखा है? देखो नाम सुनते आप लोग हंसने लगे, लेकिन हमारा नाम सुनकर गधे नहीं हंसेंगे। यदि आपने किसी गधे को हंसते हुए देख लिया तो मान लेना कि वो मनुष्य बनने के प्रोसेस में है। और यदि कोई मनुष्य हंसना बंद कर दे तो समझ लेना फिर। इसलिए जो हंसना बंद करे, हंस बंद। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा हंस बंद। तो कांक्षंत डिजायर मैनेजमेंट, हम मनुष्यों में जो विशेषता है कि हमारे अंदर भगवान ने ऐसी विकसित बुद्धि दी है कि हमारे ऐसी विकसित बुद्धि के साथ हम हमारे अलग अलग इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। हम छोटी छोटी चीजों को मैनेज करते हैं, हम हमारे दिन को मैनेज करते हैं। देखिए बचपन में भी टाइम टेबल है ना, टाइम टेबल लिखा करते थे हम कि क्या क्या पीरियड्स होंगे हमारे स्कूल में, उसके सब्जेक्ट्स कौन से, क्लास टीचर, उसका एक सब नोटबुक के पीछे वो होता था, टेबल होता था, उसका हम उसका मैनेजमेंट करते हैं। फिर हम अलग अलग चीजों का, कहीं अगर हमको जाना है, कुछ यात्रा में जाना है, कहीं घूमने फिरने जाता है, उसको मैनेज करते हैं। हम हमारे फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, घर को मैनेज करते हैं, फैमिली को मैनेज करते हैं, हर चीज के पीछे। आजकल तो डिग्रियां निकल गई हैं, इस मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स बड़े बड़े, लेकिन बहुत कम लोग अपने डिजायर्स को मैनेज करने के लिए कुछ कर रहे हैं, बाकी सारी चीजों के लिए इतने सारे हमने डिपार्टमेंट्स खोल लिए मैनेजमेंट के. वेरी सेल्डम यू फाइंड पीपल दे हैव एनीथिंग गोइंग ऑन इन रिगार्ड्स टू मैनेजिंग देयर डिजायर्स. और इसके विषय में भगवत गीता के 15वें अध्याय का पहला श्लोक भगवान कहते हैं, कौन जानता है? ऊर्ध्व मूल मदशाकम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम. भगवान कहते हैं कि एक ऐसा अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, ब्रांचेस वो नीचे की ओर हैं और रूट्स जो हैं वो ऊपर की ओर. तो प्रभुपाद उसके परपोर्ट में लिखते हैं कि ऐसा वृक्ष आपको केवल प्रतिबिंब में दिखेगा, जो सरोवर के निकट है उसका प्रतिबिंब आप सरोवर में देखो उस वृक्ष का, तो उल्टा प्रतिबिंब उल्टा दिखेगा. अच्छा, ये मैं क्यों आपको उदाहरण सुना रहा हूं, क्योंकि भगवान ने जो उदाहरण दिया है अश्वत्थ वृक्ष के प्रतिबिंब का उदाहरण, कि इस भौतिक संसार में आध्यात्मिक संसार का सब कुछ उल्टा दिखता है. जो आध्यात्मिक संसार में सबसे ऊंचा रस है वो इस भौतिक संसार में सबसे नीचा माना जाता है, और जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे नीचा है वो इस भौतिक संसार में सबसे ऊंचा माना जाता है. उल्टा सब कुछ, प्रतिबिंब में सब कुछ उल्टा दिखता है. तो ये उदाहरण भगवान ने दिया है 15वें अध्याय में. परंतु श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इस प्रतिबिंब को देखने के लिए वो जल की आवश्यकता है उस सरोवर में. यदि उस सरोवर में जल ही नहीं होगा तो प्रतिबिंब नहीं दिखेगा. तो वो जो रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब उस जल में दिख रहा है इस अश्वत्थ वृक्ष का, तो उसकी तुलना इच्छा से की गई, डिजायर्स. कि हालांकि हमारी इच्छाएं जो कि इतनी सूक्ष्म दिखाई भी नहीं देती, लेकिन है सबके अंदर. इस वक्त भी हम सबके अंदर कितनी इच्छाएं हैं यदि कोई गिनने जाए, अनलिमिटेड असंख्य इच्छाएं. और असंख्य इच्छाएं एक व्यक्ति के अंदर, और ऐसे असंख्य जीव अपनी असंख्य इच्छाओं को लेकर इस सीमित जगत में जी रहे हैं. इच्छाएं असीमित हैं परंतु जगत और उसके रिसोर्सेस सीमित हैं. इसलिए वो गरुड़ पुराण का श्लोक है, पतंग मातंग कुरंग भृंग मीन हता पंच भिरेव पंच एकम प्रमाथी सकथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच. तो इसमें ये पांच प्राणियों का उदाहरण दिया गया है. हम उदाहरण काफी दफा ले चुके हैं कि ये पांच प्राणी हैं और उनकी पांच इंद्रियां और पांच विषय वस्तु, जैसे हमारे आंख नाक कान स्पर्श इत्यादि, तो इनके पांच विषय वस्तु. परंतु ये सारे जो प्राणी हैं, एक पतंगा है, एक हाथी है, एक हिरण है, एक मछली है, ये अपने एक एक विषय वस्तु को जब भोगने जाते हैं तो प्राण खो बैठते हैं. मछली अपने स्वाद को भोगने जाती है तो प्राण खो बैठती है. एक हाथी है जो अपने स्पर्श इंद्रिय को भोगने जाता है तो गड्ढे में अटक कर वो भी फंस जाता है. ऐसे ये पांच प्राणियों का उदाहरण दिया है. परंतु इस श्लोक में कहा गया है एकम प्रमाथी, एक ऐसा प्राणी है कि जो अपने पांचों इंद्रियों को एक साथ वो भोगना चाहता है. सकथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच, फिर उसका हनन क्यों नहीं होगा यदि वो एक साथ अपने पांचों इंद्रियों को पांचों विषय वस्तु में लगाना चाहे. और वो प्रसिद्ध प्राणी कौन है? मनुष्य. अनलिमिटेड डिजायर्स. इतना ही नहीं बल्कि ये जो हमारा मन है, एक्सरे अगर निकाला जाए हमारे मन का, जैसे बाहर से उजला उजला चेहरा दिखता है हम सबका, लगता है कि सब कुछ कितना साफ सुथरा सरल है, परंतु अंदर ये जो सर्किट, ये अंदर का जो सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट करने वाला सर्किट है। इतने पेचीदे हमारे मन हैं, इतने पेचीदे, इतने कॉम्प्लेक्स हमारे माइंड्स हैं। एक बार एक कंपनी में बॉस ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि एक हफ्ते के लिए ऑफिशियल ट्रिप के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना है पेरिस। फीमेल सेक्रेटरी थी उसकी, तो एक हफ्ते के लिए पेरिस जाना है। बॉस ने सेक्रेटरी को बोल दिया। सेक्रेटरी तुरंत घर पर जाकर अपने हस्बैंड को कहती है कि मैं एक हफ्ते के लिए बॉस के साथ पेरिस जा रही हूं ऑफिशियल ट्रिप। कब? कल। ओ कल, कल ही ठीक है। हस्बैंड ने अपनी प्रेमिका को फोन किया, फोन करके कहता है एक हफ्ता फ्री, फ्री पैसेज है हमारे लिए। तो उसको इन्फॉर्म कर दिया। प्रेमिका वो ट्यूशन टीचर थी, तो उसने अपने सारे बच्चों को कह दिया एक हफ्ते बच्चे सब छुट्टी तुम्हारी, सब लोग छुट्टी बनाओ एक हफ्ते। तो उसमें से एक लड़का था, वो जाके अपने पिताजी को कहता है पिताजी टीचर ने एक हफ्ते की छुट्टी दी है, मैं एक हफ्ता आपके साथ घूमने जाना चाहता हूं। पिताजी बोलता है चलो मैं पेरिस जा रहा हूं मेरे साथ। वही था, पिताजी कौन था? वो बॉस था। तो पिताजी ने अपने सेक्रेटरी को बोल दिया कि तुमको आने की जरूरत नहीं है, मेरा लड़का मेरे साथ जा रहा है। उसने जाके अपने हस्बैंड को बोल दिया ट्रिप कैंसिल। हस्बैंड ने तुरंत फोन उठाया, उसको बोला ट्रिप कैंसिल हो गया है, तुम्हारा भी कैंसिल करो। उसने बच्चों को बुलाया, सब लोग को कल से ट्यूशन आना है। बच्चे ने जाके पिताजी को बोल दिया क्या? छुट्टी कैंसिल। पिताजी ने वापस सेक्रेटरी को बोल दिया। ये है कलयुग का कॉम्प्लेक्स पेचीदा माइंड। वेलकम टू कलयुग माइंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग, हमारे चार्ली चैपलिन के एक कार्टून से क्लिपिंग लिया हुआ है कि हमारा जो मन है जिसके अंदर ये इतने सारे सिस्टम सब एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट्स हो रहे हैं, तो उसका हाल क्या होता है। अब हमें उसके हाल पर तरस आ रहा होगा, परंतु हमारा मन उस मशीन की तरह, जैसे हमने पढ़ा कि जब हम उसको कंट्रोल में रखते हैं, जब मशीन हमारे कंट्रोल में रहे तो वो मशीन उपयोगी होती है हमारे लिए, परंतु जब वही मशीन अनकंट्रोल हो जाती है, ये हमारा माइंड है वो यंत्र के समान है। इसलिए मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय बंधाय विषयासंगो मुक्ति निर्विषयम मनः। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि ये मन हमारा जब तक हमारे कंट्रोल में है वो हमारी मुक्ति का कारण बन सकता है, और यही मन, यही कांक्षाएं, यही आकांक्षाएं, यही इच्छाएं जब हमारे कंट्रोल में नहीं या दुरुपयोग इसका होता है तो वो, इसको कहते हैं एक स्नोबॉल इफेक्ट लेता है। स्नोबॉल इफेक्ट ये बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे कि किसी बर्फीली पहाड़ी पर चोटी से, जो बर्फ, उस पर्वत की जो चोटी है, जो पीक है, वहां से एक छोटा सा बर्फ का गोला, जैसे यहां पर आप देख रहे हो, एक छोटा सा बर्फ का गोला, वो लुढ़कते हुए वो जब नीचे आता है तो स्नोबॉल इफेक्ट किसको कहते हैं कि वो उसकी शुरुआत होती है जब लुढ़कते हुए वो आता है नीचे, तो वो छोटा सा दिखता है, परंतु लुढ़कते लुढ़कते उस पर्वत पर जितनी बर्फ है उसके रास्ते पे, वो सारी बर्फ को अपने ऊपर चिपकाते हुए चिपकाते हुए चिपकाते हुए कई बार वो इतना बड़ा बन सकता है। ये एक्चुअल एक स्नोबॉल जो नीचे तक पहुंच गया है उसकी इमेज है ये। इसको कहते हैं द स्नोबॉल इफेक्ट। तो मैं क्यों सुना रहा हूं, हमारी इच्छाएं जो हैं, भौतिक इच्छाएं, वो भौतिक इच्छा भी जो है शुरुआत में बहुत मासूम, एक छोटे से बर्फ के गोले के समान, परंतु जब इस भौतिक जीवन के शिखर से ये छोटा सा बर्फ का गोला लुढ़कना प्रारंभ करता है, और विशेष रूप से कलयुग में इस कलयुगी पर्वत के शिखर से जब लुढ़कना प्रारंभ करता है, तो धीरे धीरे ये बर्फ का गोला इतना बड़ा होता जाता है, इतना बड़ा हो जाता कि एक समय आता है कि ये कईयों की जान ले लेता है रास्ते में, इतना बड़ा ये बर्फ का गोला हो सकता है। और उसको एक और नाम इंग्लिश में कहते हैं एवलांच, पता नहीं अभी उसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसका हमारे माइंड से कनेक्शन है, अभी इसको उपमा हमारे माइंड की दी गई है या माइंड को इसकी उपमा दी गई है। सो समथिंग स्मॉल, अब देखिए ये बड़ा होता है, बड़ा हो रहा है, एक पॉइंट आता है जब उसको कहते हैं द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जैसे यहां पे लिखा हुआ ना नो गोइंग बैक पॉइंट। इसके बाद अब उस बर्फ के गोले को कोई रोक नहीं सकता, कोई उसको पीछे नहीं ढकेल सकता। वैसे ही भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है, और हमारे बाकी उपनिषदों में भी हमारे मन के विषय में और इच्छाओं के विषय में कहा है कि ये हमारी जो इच्छाएं हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जहां से हम उसको रोककर वापस रिटर्न कर सकते हैं, अर्थात उस पर एक्शन न लेकर। परंतु एक पॉइंट आ जाता है कि जब वो उसको क्रॉस कर दे, वो लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर दे वो इच्छा, फिर वो कौन से जोन में चला जाता है, द लाइन ऑफ नो कंट्रोल, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। और इसलिए हमारे योग सूत्रज में ये कहा गया है कि ये अलग अलग स्टेजेस हैं हमारे स्नोबॉल इफेक्ट माइंड के। सबसे पहले अवेयरनेस, उसके पश्चात जैसे भगवान ने कहा ध्यायतो विषयान पुंसाम, विषयों विषय वस्तु के ऊपर जब हमारा मन ध्यान वो ज्यादा देता है, केंद्रित करता है, तो फिर वो एक काम वासना, ये एक ऐसी तीव्र इच्छा में वो परिणित होता है। उसके पश्चात फिर करना ही है, उसको कहते हैं कन्विक्शन। फ्रॉम कॉग्निशन टू कंटेम्पलेशन टू इमोशन टू कन्विक्शन एंड फाइनली टू एक्शन। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा माइंड है ये इस कलयुग में किस प्रकार से कार्य करता है, कि बहुत से फैक्टर्स हैं जो हमारे माइंड को प्रेरित करते हैं कुछ चयन करने के लिए। इसलिए ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सेमिनार है, मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा, परंतु यहां पर इस चित्र को देखकर आप समझ गए होंगे कि अक्सर हमारे साथ भी क्या होता है कि एक तरफ व्हेन देयर आर हेल्दी चॉइसेस एंड व्हेन देयर आर अनहेल्दी चॉइसेस, यू विल ऑलवेज फाइंड इन कलयुग, स्पेशली इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, द कलयुग माइंड चूजेस द अनहेल्दी। क्यों? क्षिप्रम ही मानुषे लोके, जो भगवान कह रहे हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एंड यू विल ऑलवेज फाइंड अनहेल्दी चॉइसेस आर टेस्टी एज अगेंस्ट हेल्दी चॉइसेस विच आर नॉट सो टेस्टी। इसलिए आजकल मेरे ख्याल से एडवर्टाइजमेंट्स भी ऐसे आते हैं ना, आटे के बिस्किट जो टेस्टी भी है, पहले नहीं आते थे बिस्किट आटे के, ऐसे वो एडवर्टाइज नहीं करते थे, अब लोग इतने बीमार होते जा रहे, बीमार होते जा रहे, तो बिस्किट तो बेचने, बिस्किट तो खाने, इसलिए फिर आटे के बिस्किट खाइए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आटे के बिस्किट टेस्टी नहीं होंगे, तो हम दावा दे रहे हैं कि ये टेस्टी भी है। तो अक्सर होता क्या है, दिल और दिमाग, दिल और दिमाग में ये जो डिबेट चलता रहता है, और हर समय बंदूक किसके हाथ में होती है? दिल के हाथ में बंदूक होती है, और हर समय दिमाग को गन पॉइंट के ऊपर दिल बोलता है, दिल मांगे। तो चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस, हम क्या चयन करते हैं? एक बार हमने जो चुन लिया, जैसे कल मैं उदाहरण दे रहा था कि दामोदर लीला में माता यशोदा ने कीर्तन किया, यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानी च। दिवाली का दिन सुबह सुबह माता यशोदा जब दही बिलो रही थी तो कीर्तन कर रही थी, तो जैसे कीर्तन उन्होंने प्रारंभ किया, सोए हुए भगवान उठे और भगवान पहुंचे, माता यशोदा की मथनी रोकी, मंथन रोका, बिलोना रोका, अब मुझ पर ध्यान दो। तो वैसे ही जब कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन प्रारंभ करता है तो भगवान पर्सनली उसके जीवन में आते हैं और बोलते हैं अब सब कुछ रोक, मैं आ गया, बोले मुझे बुलाया ना, ये इफेक्ट है, ये अलग स्नोबॉल इफेक्ट है, किसका? भगवान के कीर्तन का, भगवान के नाम जप का। तो चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस, अब इसमें ये हम इस पर थोड़ा गौर करेंगे। मैं उदाहरण देता हूं शतरंज का, द गेम ऑफ चेस। हम सब ने शतरंज यदि खेला नहीं है तो जानते तो हैं शतरंज। शतरंज में दो प्लेयर्स होते हैं, आप और यदि आपका जो ओपोनेंट सामने बैठा है, तो जब चाल आप एक कर लेते हो, आप एक चाल करते हो या आप एक चाल चलते हो, तो अब अगला व्यक्ति आपके चाल के अनुसार वो अपनी चाल चलेगा, और एक निपुण शतरंज का खिलाड़ी कौन है जो अपोनेंट की चाल को या अगले तीन चार चाल को पहले से ही भांप ले। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि ये इस दुनिया में हम लोग जो जी रहे हैं तो ये शतरंज का खेल चल रहा है जिसके अंदर हमें खिलाड़ी हैं और प्रकृति, भगवान की प्रकृति वो अपोनेंट है। तो हम जो चाल चलते हैं वो क्या है? चॉइसेस, वो हमारे चॉइसेस हैं। हमने जो चाल चली वो हमारे चॉइसेस हैं, और एक बार जो हमने चाल चल दी अब उसको आप चीटिंग नहीं कर सकते कि नहीं 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 मैंने वो वैसे सोचा नहीं था। बहुत बार तो पूछ लेते, ठीक है कंफर्म, हाँ इसके आगे मैं करूं अपना चाल, हाँ। तो प्रकृति फिर हमारे चाल के अनुसार जो चाल चलती है वो है परिणाम, वो है कॉन्सिक्वेंसेस। तो यदि शतरंज के खेल में कोई हारता है तो एक कारण हम बोल सकते हैं कि अपोनेंट वो बहुत शातिर दिमाग का था इसलिए वो जीत गए, एक वो कारण बोल सकते हैं। दूसरा कारण क्या बोल सकते हमारे हारने का? हमारे हारने का दूसरा कारण क्या बोल सकते? हमने बेवकूफी की, अरे मुझे क्या वहां पे देखा ही नहीं मैंने, वो घोड़ा उधर था, अरे हाथी इधर था। तो इसलिए हमारे जीवन में हम यदि हार रहे हैं तो सबसे पहले हमें हमारी चाल को देखना चाहिए कि मैं क्या क्या चॉइसेस कर रहा हूं मेरे जीवन में। इसलिए जो सबसे ज्यादा हम दुर्लक्ष कर देते हैं किसको? जो भगवान आज के श्लोक में सबसे पहला शब्द इस्तेमाल किए हैं, और वो कौन सा किए हैं? चॉइसेस, या हमारे डिजायर्स। हमारे डिजायर्स के अनुसार फिर हमारे कॉन्सिक्वेंसेस बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। इसलिए इसके ऊपर मैंने एक फुल लेंथ सेमिनार एक बार लिया था, डिसीजन मेकिंग। या डिजायर मैनेजमेंट, हमारा पूरा मनुष्य जीवन कुछ नहीं है, केवल हमारी इच्छाएं, हमारे चॉइसेस, जो चॉइसेस हमने बचपन से लेके अब तक ली हैं, हमारा जो प्रेजेंट है वो हमारे पास चॉइसेस की वजह से है। और अभी के जो प्रेजेंट चॉइसेस हम लेंगे या ले रहे हैं वो हमारा फ्यूचर निर्धारित करेगा। इसलिए भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि जब कोई इस भौतिक संसार में प्रकृति में अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता तब अन्य देवताओं के पास वो जाता है। तो प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति अन्य देवताओं के पास क्यों जाता है? तो भगवान यहां पर इस श्लोक में बोल रहे हैं, Why do people in general worship the devatas? क्योंकि वहां पर उनको दिखता है कि मैं अपने शक्ति से, अपने बलबूते पर मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा, इसलिए फिर मुझे किसी का सहारा चाहिए जिसके द्वारा मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। तो उदाहरण हम देखते हैं कि जो अक्सर देवताओं की उपासना करते हैं वो किस भावना में कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं कि सभी, परंतु अक्सर देखा जाता है कि किस भावना में करते हैं। जैसे कि कोई एयरपोर्ट पे, या आजकल आप देखते हो वेंडिंग मशीन्स होते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, तो क्या ये वेंडिंग मशीन, आप उसके अंदर कुछ रकम डालो और सारे डिस्प्ले में अलग अलग आइटम्स हैं, वो आइटम्स आप उसके अंदर लोड करो, प्रोग्राम करो कि आपने इतनी रकम डाली है, वो आइटम बाहर आए। इसलिए लंबा लिस्ट है, जैसे वेंडिंग मशीन के अंदर लिस्ट होते हैं आइटम्स के, वैसे लंबा लिस्ट है हमारे शास्त्रों के अंदर कि किसी को अच्छा रूप चाहिए तो कौन सा देवता है उसके लिए, कौन सा देवता की उसको पूजा करनी है, किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो कौन सा देवता है उसके लिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को विदेश जाना है वहां सेटल होना है, किसी को अच्छा पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, ये वो, सबके लिए बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है। इसलिए ये जो 33 करोड़ देवता है, ये सारे हम लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के गवर्नमेंट के कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो रेन डिपार्टमेंट देवराज इंद्र, इसके विषय में हमने बहुत सुना है, वैसे ही लाइट डिपार्टमेंट वो है सूर्य देव, वरुण देव कौन सा है वाटर डिपार्टमेंट, हीट एंड फायर डिपार्टमेंट अग्निदेव, चंद्रदेव है वेजिटेशन, जितने सारे हम ये तरकारियां सब्जी इत्यादि ये सब चंद्रदेव वो अपना रस उसके अंदर डालते हैं, वायुदेव एयर डिपार्टमेंट ऑब्वियसली, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स अगर कोई आरोप करे, दोषारोपण करे कि भाई स्त्रियों के लिए कौन सा कैबिनेट दिया हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कैबिनेट स्त्रियों को दिया है भगवान ने, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सरस्वती डिपार्टमेंट, इससे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट क्या हो सकता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट लक्ष्मी देवी, और डिफेंस डिपार्टमेंट। तो देखो किसी भी देश के अंदर ये तीन डिपार्टमेंट बहुत शक्तिशाली होते हैं, डिफेंस, फाइनेंस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो भगवान की सत्ता में ये तीन सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट भगवान ने किसको दिया है, महिलाओं को दिया है। जय माता दी। ट्रेजरर हमारे कुबेर जी हैं, कमांडर इन चीफ कार्तिकीय है, ब्रह्मा जी कौन है, वो कंस्ट्रक्शन इंचार्ज, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट उनका है ब्रह्मा जी का। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो कि अगर आप मिस कर चुके हैं तो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, और ये ध्यान देने योग्य डिपार्टमेंट है, ये है यमराज। और इनको हमने प्लेसमेंट ऑफिसर, कि चाहे कोई अपने पुण्य कर्म या पाप कर्म या मिश्रित कर्मों के साथ अपना जीवन जी रहा है, इसका सबका लेखा जोखा सबसे पहले कहां पर ऑटोमेटिकली कहां रिकॉर्ड होता है, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त वो सेक्रेटरी है यमराज जी के, और वो सब कुछ रिकॉर्ड रख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सब कुछ उनके पास रिकॉर्ड रहता है और फिर उसके अनुसार वो बैलेंस शीट हमारा निकालते हैं और वो कहीं पर भी उधर कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई नोट काम नहीं आएंगे वहां पे, कोई रिश्वत काम नहीं आएंगे वहां तो वहां पर हमारा सबका लेखा जोखा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान ने कह दिया है जो कि इन सब के अधिष्ठात्रा देव हैं, इसलिए जब कोई भगवान श्री कृष्ण को शरणागत होता है, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति जब कोई करने जाता है तो भगवान उसकी शांति दूर करते हैं सबसे पहले, अशांति नहीं। क्योंकि यदि कोई अध्यात्म में शांति ढूंढने के लिए आया है या कृष्ण भक्ति कर रहा है शांति ढूंढने के लिए, तो भगवान शांति लेकर उसको अपना प्रेम देते हैं, अपना स्वयं का आनंद देते हैं। इसलिए भगवान की ये सारी जो लीलाएं हैं, विशेष रूप से ये जो कार्तिक का महीना, इसके अंदर भगवान ने जो भी लीलाएं की हैं, उन सब लीलाओं के अंदर भगवान ने उन ब्रजवासियों को केवल तथाकथित शांति नहीं दी, भगवान ने अपना स्वयं का आनंद, अपने स्वयं का प्रेम उनको दिया जो कि इन सब से परे है। इसलिए ये जो आज का श्लोक है, कांक्षंत कर्मणाम सिद्धि यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके, कि केवल क्षिप्रम की एक क्षण भंगुर सुख के लिए मनुष्य जो है बहुमूल्य अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है, और इसके विपरीत शुद्ध भक्ति के विषय में कहा गया है अन्य अभिलाषित शून्यम, जब हमारी सारी ऐसी भौतिक इच्छाओं से हम शून्य हो जाएंगे और एकमात्र इच्छा यही रहेगी कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन जीऊं, तब जाकर भगवान कहते हैं क्षिप्रम ही भवति धर्मात्मा, वो अति शीघ्र वो धर्मात्मा, भगवान कहते हैं कि मैं उसे धर्मात्मा मानता हूं, यदि वो गलतियां भी कर रहा है परंतु मैं उसे धर्मात्मा मानता हूं। तो हमें कैसे समझना चाहिए आज का श्लोक, इसका सारांश मैं आपको बताना चाहूंगा कि हां, इस भौतिक संसार में हमें पेन किलर्स की जरूरत है दर्द दूर करने के लिए, परंतु औषधि लेना मत भूलिए। इस भौतिक संसार में सफल होना, निपुण होना, यह सब कुछ आवश्यक है जीवन यापन के लिए, हां यह बात मानी गई है और यह बताया भी गया है, जैसे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ बताया गया, परंतु औषधि, और वो क्या है, भगवान का नाम। इसलिए जो आज के वर्तमान स्थिति में मैं यही कहना चाहूंगा कि बाकी कितना भी धन इकट्ठा आप कर लो, एक दिन इनवैलिड होने वाला है वो, चाहे कितने भी नोट इकट्ठा कर लो, एक दिन वो नोट सारे इनवैलिड होने वाले हैं, परंतु एक धन है और वो है नाम धन, भगवान का हरिनाम धन। वो ऐसा है कि चाहे वो कितना भी आप इकट्ठा कर लो, वो कभी ब्लैक नहीं होगा, वो कभी ब्लैक नहीं होगा। इनफैक्ट हमारे अंदर जो काला है वो सब कुछ साफ करेगा ये धन। ये है नाम धन, भगवान के नाम धन की महिमा। इसलिए हम यही अनुरोध करते हैं कि भगवान ने आज के श्लोक के द्वारा हमें संकेत दिया है कि हम ये गलती ना करें, जो हमने इतने जन्मों से ये काला धन इकट्ठा किया है, कौन सा, कांक्षंत कर्मणाम सिद्धि का काला धन इकट्ठा किया है, वो लौटा दे। और कैसे, ये हरिनाम लेकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, विदाई गौर प्रेमानंदी।